नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवादा में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव औरंगाबाद, जमुई और गया में चुनावी सभाओं में लेंगे भाग। राजद ने सीवान संसदीय सीट से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया। वीआईपी ने झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ और एआईएमआईएम ने काराकाट से प्रियंका चौबे को बनाया प्रत्याशी। और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में बिहार के 4 समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवादा संसदीय क्षेत्र के अकबरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इसी संसदीय क्षेत्र के बरबीघा में रोड शो करेंगे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार लोजपा आर के प्रत्याशी अरुण भारती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और खगड़िया में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया और गया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने कुछ और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। सीवान संसदीय सीट से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला जदयू की विजय लक्ष्मी देवी से होगा। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सुमन कुमार महासेठ को अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर एआईएमआईएम ने काराकाट से प्रियंका चौबे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राज्य के किशनगंज संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 4 अन्य सीटों पूर्णिया, भागलपुर, बांका और कटिहार के साथ मतदान होगा। अल्पसंख्यक बहुल किशनगंज लोकसभा सीट किशनगंज जिले के 4 और पूर्णिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण किशनगंज को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट।
सीमांचल बिहार के किशनगंज क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कड़ा चुनावी मुकाबला होने के आसार हैं। 16 लाख से अधिक मतदाता इस बार 12 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। कांग्रेस के मौजूदा सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद, जदयू के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान मुख्य प्रत्याशी हैं। अमौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मतों के करीब करीब बराबर बराबर बढ़ जाने से काफी कम अंतर से जीत और हार का फैसला हुआ था और कांग्रेस अपनी सीट बचाने में सफल रही थी। 2009 से ही कांग्रेस लगातार किशनगंज का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2019 में बिहार में 40 में से 19 सीटों पर हार का सामना करने वाला महागठबंधन केवल इसी एक सीट पर जीत हासिल कर सका था। किशनगंज का संसदीय इतिहास देखें तो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने इस लोकसभा सीट का 3 बार जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1999 में 1 बार प्रतिनिधित्व किया है। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमौर और बायसी विकास के पायदान पर अत्यंत पिछड़े और गरीबी वाले क्षेत्र हैं। विकास का अभाव, बुनियादी ढांचा की कमी और हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही इस संसदीय क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अवैध खर्चों पर नजर रखने के लिए निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष निर्देश भेजे हैं। आयोग के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 54 सर्विलांस टीमों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। इस टीम में एक पदाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी के साथ एक वीडियोग्राफर और एक जीपीएस युक्त वाहन होगा। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने औरंगाबाद जिले में 4 दिवसीय विशेष मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया है। सारण लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के हरिहर नाथ मंदिर में पूजा करने के दौरान पार्टी का झंडा लहराने और नारेबाजी करने पर हरिहर नाथ थाने में अज्ञात लोगों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए पटना जिला प्रशासन ने वाहनों की व्यवस्था की है। और अब पेश है लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज के इस अंक में आप सुनेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
शिवहर लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए लगातार जागरूकता का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए स्वीप कार्यक्रम पूरे जिले में चलाए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, जीविका दीदियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता के लिए रैली, रंगोली कार्यक्रम, बच्चों के अभिभावकों को संकल्प पत्र के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान केंद्र आए और अपना मतदान करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
मतदान केंद्रों पर भी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पुरुष एवं महिला के लिए अलग अलग शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए रैंप तथा व्हील चेयर की भी सुविधा मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है।
पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
मेरा नाम दिव्या सिखा है, मैं शिवहर जिले के तड़ियानी की निवासी हूँ। लोकसभा चुनाव में मैं पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करूँगी। युवाओं को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में बढ़कर भाग लेने की जरूरत है। मैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस बार मतदान करूँगी।
इधर चुनाव घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुट गया है। पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
शिवहर जिला अंतर्गत लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर अस्थायी रूप से 6 चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है, जिस पर पुलिस पदाधिकारी चेकिंग कर रहे हैं। रेगुलर छापामारी हो रही है, साथ ही सभी जगह जितने भी बल हैं वो चेकिंग थाना के स्तर से भी किया जा रहा है और जितने भी वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। सारी तैयारी लोकसभा चुनाव के लेकर के किया जा रहा है, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से चुनाव सम्पन्न हो सके।
जिले में राजनीतिक दलों का चुनाव अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ आज उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो गया। पटना के गंगा घाटों, औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर समेत राज्य के विभिन्न सूर्य मंदिरों में व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जगह जगह मठ और मंदिरों की सजावट की गई थी। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि छठ घाटों पर भीड़ समाप्त होने तक पुलिस के जवान तैनात रहे हैं। चैती नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। विभिन्न पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं के पट लोगों के दर्शन के लिए खुल गए हैं। मान्यता है कि मां कालरात्रि के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी, जिसके लिए आज से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बताया है कि यह यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। चक्रवातीय संचरण के प्रभाव से राज्य के उत्तर, दक्षिण और दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, गया और नवादा जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया है कि अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है।
मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। साथ ही इस दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं नवादा जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है।
बेगूसराय पुलिस ने जिले के नीमा चांदपुरा थाना अंतर्गत ग्राम अजहौर के भरारी चौर में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ 3 देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और 15 लीटर देसी शराब बरामद की है। इस संबंध में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 कारतूस, 4 अर्धनिर्मित पिस्तौल के साथ हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। इधर खगड़िया जिले में बहादुरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिता पुत्र को एक राइफल, आधा दर्जन पिस्तौल और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरक्षी अधीक्षक चंदन कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, जो लेवी वसूलने का काम करते हैं। बेगूसराय जिले के बीहट थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाओं के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र में बागमती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में सोन और गंगा नदी में डूबने से 1 युवती और 2 युवक की मौत हो गई। इधर कैमूर जिले के भभुआ भगवानपुर सड़क पर 2 वाहनों की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कैमूर के भभुआ में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती समारोह में बिना अनुमति डीजे बजाने के आरोप में जिला प्रशासन ने डीजे संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड के परीक्षार्थियों को 20 अप्रैल तक अपने डमी एडमिट कार्ड में सुधार करने का मौका दिया है। समिति के अनुसार 27 फरवरी से 25 माह की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से जमा किए गए आवेदन पत्र से संबंधित डमी प्रवेश पत्र आज जारी किया जा रहा है। बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी निजी कंपनी में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। दैनिक जागरण ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी से भिड़ेंगे कन्हैया। दैनिक भास्कर ने ईरान के इसराइल के खिलाफ हमले को बड़ी खबर बनाते हुए सुर्खी दी है, ईरान का पहली बार इसराइल पर हमला, दुनिया भर में चिंता। प्रभात खबर ने राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहे विवाद पर लिखा है, कुलाधिपति ने शिक्षा विभाग के एसीएस को आज बुलाया, अनुपस्थिति का भी पूछा कारण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवादा में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव औरंगाबाद, जमुई और गया में चुनावी सभाओं में लेंगे भाग। राजद ने सीवान संसदीय सीट से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया। वीआईपी ने झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ और एआईएमआईएम ने काराकाट से प्रियंका चौबे को बनाया प्रत्याशी। और उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ सम्पन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।